नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। चक्रवाती तूफान दाना के टकराने के कारण ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी, बिहार में भी तूफान का हल्का प्रभाव है। विधानसभा उपचुनाव के लिए चारों सीटों पर नामांकन का कार्य सम्पन्न, 28 अक्टूबर को होगी नामांकन पत्रों की जाँच। सूचना प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव शंकर ने कहा, प्रसार भारती जल्द अपना OTT प्लेटफॉर्म शुरू करेगा। और बिहार और कर्नाटक के बीच रणजी क्रिकेट मैच का मुकाबला कल से पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। भीषण चक्रवाती तूफान दाना के ओडिशा के तट से टकराने के बाद अब तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। इधर बिहार में इस चक्रवाती तूफान के प्रभाव से कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। आकाशवाणी से बातचीत में विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि चक्रवाती तूफान कल मध्य रात्रि को इस क्षेत्र को पार कर गया।
सीवियर साइक्लोनिक स्टर्म दाना 24 तारीख मध्यरात्र से 25 तारीख सुबह तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाका को हिट किया है। इसके प्रभाव में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल कोस्टल एरिया में वेस्ट बंगाल और ओडिशा में रिकॉर्ड किया गया है। लैंडफॉल के बाद ये वीक होते हुए कोस्टल ओडिशा में भद्रक से उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर दूरी में केंद्रीभूत है। ये धीरे धीरे अभी पश्चिम की दिशा में गति करने का पूर्वानुमान किया जा रहा है।
मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव से कल बिहार में बारिश के आसार हैं। विभाग के मौसम वैज्ञानिक ने 27 अक्टूबर तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका है।
राज्य के पूर्वी एवं दक्षिण मध्य भागों के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा एवं शेष भाग के एक दो भागों पर वर्षा का पूर्वानुमान है। आज शाम तक आते आते सिस्टम का प्रभाव बहुत कमजोर हो जाएगा। 26 अक्टूबर को राज्य के अधिकांश भाग बादलों से आच्छादित रहेगा। हवा की गति में कमी और एक दो जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है।
राज्य के चार विधानसभा क्षेत्रों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का कार्य आज संपन्न हो गया। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी, जबकि प्रत्याशी 30 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 13 नवंबर को होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बेलागंज विधानसभा सीट से 7 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव शंकर ने आज कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी जल्द अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि दोनों लोक सेवा प्रसारकों के पास कंटेंट का बड़ा भंडार है।
प्रसार भारती अपना एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इसका एक उद्घाटन भी या लॉन्च जब भी सही समय होगा उस पर लॉन्च किया जाएगा। बहुत सारे आर्काइवल मटेरियल हैं जो कि अप्रोप्रिएटली क्यूरेट करके प्रसार भारती, दूरदर्शन, आकाशवाणी इनको OTT प्लेटफॉर्म पर लाएंगी, जरूर लाएंगी और उनको लोगों से जोड़कर और उसका लाभ सभी देशवासियों को मिलने की उम्मीद है, पूरी उम्मीद है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये काफी पॉपुलर है।
इससे पहले श्री शंकर ने स्वच्छता अभियान 4.0 की प्रगति को लेकर मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान से सरकारी विभागों को काफी लाभ हुआ है।
पहले हमारे रंग रोगन वगैरह काफी समय पे होते थे, वो सब अब होने लगे हैं। जो बिल्डिंग्स में कहीं कहीं सीपेजेस वगैरह देखे जाते थे वो सब लगभग गायब हो चुके हैं और जो बिल्डिंग्स के अंदर भी साफ सफाई हो गया है और कर्मचारी भी ऑफिस में उनका मनोबल बढ़ा है क्योंकि साफ सफाई वातावरण में सभी रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो इसका काफी असर है और आगे भी रहेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज विश्व शांति स्तूप राजगीर के 55वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री कुमार ने इस अवसर पर बौद्ध भिक्षुओं के अलावा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने शांति स्तूप के निकट बने एकीकृत भवन का भी उद्घाटन किया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से परामर्श के बाद न्यायमूर्ति खन्ना को भारत का प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया है। वे 11 नवंबर को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। न्यायमूर्ति खन्ना देश के 51वें प्रधान न्यायाधीश होंगे। प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ ने आकाशवाणी से जुड़ी अपनी स्मृतियों को यादगार पल बताया है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि ये स्मृतियां अब भी ताजा हैं।
The famous voice was that of Devkinandan Pandey. In fact, he would say, in a very deeply resonating voice, he would say, ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए देवकीनंदन पांडे से। And then you had this very delicate voice of Pamela Singh and Lotika Ratnam, very, very immaculate voice when they would say, this is All India Radio, the news read by Lotika Ratnam.
बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने आज कहा कि युवाओं को पुस्तक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए क्योंकि पुस्तकें अच्छा मित्र और मार्गदर्शक होती हैं। उन्होंने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि पुस्तकों के पढ़ने से मोबाइल की भी लत कम होगी। राज्यपाल ने कहा कि इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए राजभवन ने आओ पुस्तक पढ़ें, पढ़े बिहार बढ़े बिहार अभियान की शुरुआत की है। केंद्र ने 21वीं पशुधन गणना के साथ पशुओं में महामारी से निपटने की तैयारियों तथा देश में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पर आज महामारी निधि परियोजना की शुरुआत की। मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि सरकार 2030 तक देश से खुरपका और मुंहपका रोग तथा ब्रुसेलोसिस को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पशुधन जनगणना पशुधन के लिए बनाई जाने वाली नीतियों में प्रमुख भूमिका निभाएगी। श्री सिंह ने कहा कि G20 महामारी कोष परियोजना से प्राप्त धनराशि पशु चिकित्सालयों के विकास और सुधार में सहायता करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्सेंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने नीट पेपर लीक के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। साथ ही छापेमारी के दौरान जिन जमीन और मकान के कागजात मिले हैं उसकी खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। EOU के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि संजीव मुखिया की बेनामी संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने जमुई में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जमुई में शिक्षक के साथ मारपीट की घटना निंदनीय है, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षकों से मारपीट जरूर हुई है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने आरक्षी अधीक्षक को बोला है और इस संबंध में अरेस्टिंग भी हुई है और जो मुख्य आरोपी जो फरार है आजकल वो झारखंड में घूम रहा है तो उसको भी अरेस्ट करने के लिए अलग से टीम बनाकर आरक्षी अधीक्षक कार्य कर रहे हैं और हम लोगों ने ये कहा है कि जो भी शिक्षक को हाथ भी लगाएगा या तंग करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस संबंध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई आरक्षी अधीक्षक को करने को कहा गया।
पटना जिले में छठ घाट की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि फिलहाल करीब 8 घाट खतरनाक हैं, लेकिन पानी घटने के साथ ही इसमें सुधार होने की संभावना है।
जो शहरी क्षेत्र के 109 घाट हैं उसमें से लगभग 75 घाटों का हम लोगों ने निरीक्षण किया है और स्थिति ठीक है, पहले से बेहतर हुई है जो पिछली बार निरीक्षण हुआ था। छठ के दिन तक जो अभी का वाटर लेवल है, जलस्तर है, लगभग 1 मीटर और कम होगा, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी मुख्य रूप से संपर्क पथ की तैयारी का काम चल रहा है सभी घाटों के और घाटों पर जो जगह उपलब्ध है उसका काम चल रहा है और पानी जैसे कम होगा जो घाट और निकलेगा तो उस पर भी हम लोग तैयारी किए हैं, काम करेंगे और उसी के अनुसार फिर बैरिकेडिंग भी हम लोग करेंगे। खतरनाक घाट में लगभग 8 हैं जो खतरनाक और अनुपयुक्त है, जैसे अभी आज हम लोगों ने जो देखा है उसमें LCT घाट, पहलवान घाट, बांस घाट, ये सब जो है खतरनाक की श्रेणी में है या कटाव हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। MyGov नमो ऐप पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने का आज अंतिम दिन है। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव एन विजय लक्ष्मी ने कहा है कि जिलों में पशुओं के लिए चिकित्सालयों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी और इसका लाभ पशुपालकों को मिलेगा। उन्होंने नवादा में कहा कि जमीन उपलब्ध होने पर अस्पताल बनाने की कार्रवाई की जा रही है।
हम लोग प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय बनाते हैं, तो बहुत सारे पशु चिकित्सालय ऐसे प्रत्येक जिले में हैं, तो उसके लिए जमीन का एक मुद्दा था कि जमीन नहीं मिल पा रहा था नया बनाने के लिए। तो मैं डीएम साहब को आभार भी व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 जगहों पे, नवादा में 1, रजौली में, पकरीबराव में 2, सिंधला में 1, रोह में 1, कुल 6 जगहों पे प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करा दिया है। तो बहुत जल्दी उसको हम लोग टाउन में शुरू करवा देंगे।
बिहार और कर्नाटक के बीच रणजी क्रिकेट मैच का मुकाबला कल से पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्नाटक की टीम पटना पहुंच गई है। कल सुबह 8:30 बजे इसकी शुरुआत होगी। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की सितम्बर महीने की रैंकिंग में बक्सर जिला बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लागू करने के मामले में पहले स्थान पर रहा है। वहीं सुपौल जिले को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू करने में पहला स्थान मिला है। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद ने 2 करोड़ रुपए तक पूंजी निवेश के पहले चरण के तहत 15 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। उद्योग विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी की अध्यक्षता में परिषद की बैठक में 71 इकाइयों के लिए 1,93,00,000 रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने आज सिमुलतला आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने गुणवत्ता को लेकर विद्यालय प्रशासन को विभिन्न निर्देश दिए। मधुबनी के लदनिया थाना अंतर्गत भगवतीपुर गांव से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक व्यक्ति को उसके घर से करीब 35 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चक्रवाती तूफान दाना के टकराने के कारण ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी। बिहार में भी तूफान का हल्का प्रभाव है। विधानसभा उपचुनाव के लिए 4 सीटों पर नामांकन का कार्य संपन्न। 28 अक्टूबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच। सूचना प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव शंकर ने कहा प्रसार भारती जल्द अपना OTT प्लेटफॉर्म शुरू करेगा। और बिहार और कर्नाटक के बीच रणजी क्रिकेट मैच का मुकाबला कल से पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।